संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 29 जुलाई 2022 के बुलेटिन की सुर्खियां। स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण हुआ एक सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषित। काला सागर अनाज निर्यात समझौते पर अमल करने के लिए इस्तांबुल में एक संयुक्त केंद्र गठित। मंकी पॉक्स के 78 देशों में 18,000 से ज्यादा मामले, सतर्कता बरते जाने की पुकार। हेपेटाइटिस के एक अति गंभीर रूप का फैलाव जोरों पर, जिससे बच्चे हैं ज्यादा प्रभावित। और भारत में एकल प्रयोग प्लास्टिक पर पाबंदी की प्रासंगिकता के बारे में यूएन पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप की भारत में कार्यक्रम प्रबंधक दिव्या दत्त के साथ एक खास बातचीत। हम आपको याद दिलाते चलें कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य वाली मल्टीमीडिया समाचार सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। आप हमारा न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे समाचार आपको हर दिन मिलते रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित करके स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण तक पहुंच को एक सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषित किया है। इसी तरह का एक प्रस्ताव जिनेवा स्थित मानवाधिकार परिषद ने भी अक्टूबर 2021 में पारित किया था। महासभा का ये प्रस्ताव भी उसी पर आधारित है और इसमें देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और कारोबारी संस्थानों से सर्वजन के लिए एक स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रयास बढ़ाने का आह्वान किया गया है। यूएन महासभा में ये प्रस्ताव मूल रूप से कोस्टा रिका, मालदीव्स, मोरक्को, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड ने पिछले महीने प्रस्तुत किया था। संयुक्त राष्ट्र में कोस्टा रिका की उप प्रतिनिधि मार्टिजा चान का कहना था,
This is step forward into a future we know is possible because we have been working towards it for over 50 years since Falcon.
आइए हम एक ऐसे भविष्य की तरफ कदम बढ़ाएं जो हम जानते हैं कि संभव है, क्योंकि हम इसके लिए स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद से पिछली आधी सदी से काम करते रहे हैं। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की हिफाजत और बेहतरी करने के लिए, जो कि पूरी मानवता के लिए एक अनिवार्य लक्ष्य है। संयुक्त राष्ट्र में कोस्टा रिका की उप प्रतिनिधि मार्टिजा चान का वक्तव्य। यूएन महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने भी इस ऐतिहासिक प्रस्ताव के पारित होने का स्वागत किया है और कहा है कि ये ऐतिहासिक घटनाक्रम दिखाता है कि सदस्य देश हमारे तिहरे पृथ्वी संकटों यानी जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और प्रदूषण का सामना करने के लिए एकजुट हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने तुर्की के इस्तांबुल शहर में स्थित उस अभियान का आधिकारिक आरंभ होने का स्वागत किया है, जिससे काला सागर से होकर यूक्रेन के अनाज निर्यात को संभव बनाने के लिए यूएन समर्थित एक समझौते को लागू करने में मदद मिलेगी। ये निर्यात युद्ध जारी रहने और दुनिया भर में खाद्य मूल्यों में बेतहाशा बढ़ोतरी के बीच अहम माना जा रहा है। कुछ और जानकारी के साथ शिवानी काला।
संयुक्त समन्वय केंद्र नामक इस अभियान का उद्घाटन बुधवार को हुआ, जिसमें यूक्रेन, रूस, तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने शिरकत की। यूक्रेन, रूस और तुर्की ने शुक्रवार 22 जुलाई को काला सागर अनाज निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त समन्वय केंद्र यानी JCC इस समझौते के तहत यूक्रेन के 3 काला सागर बंदरगाहों ओडेसा, चोर्नोमोस्क और यूहिनी से व्यावसायिक खाद्य पदार्थों और उर्वरकों से भरे व्यापारी जहाजों का सुरक्षित परिवहन आसान बनाएगा। यूएन उप प्रवक्ता फरहान हक ने कहा कि इससे दरअसल बढ़ती वैश्विक खाद्य असुरक्षा का कारगर ढंग से सामना करने और उसकी रोकथाम करने में मदद मिलेगी। संयुक्त समन्वय केंद्र इस समझौते का पालन सुनिश्चित करने के लिए व्यावसायिक जहाजों के आवागमन की निगरानी करेगा। यूएन महासचिव ने इस समझौते को धरातल पर लागू करने में तमाम संबंधित पक्षों और संयुक्त राष्ट्र को एक सुविधा मंच मुहैया कराने के लिए तुर्की का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने रूस और यूक्रेन को भी त्वरित गति से अपने वरिष्ठ प्रतिनिधि नियुक्त करने और उन्हें इस्तांबुल भेजने के लिए धन्यवाद दिया।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि 78 देशों में मंकी पॉक्स के संक्रमण मामलों की संख्या 18,000 से अधिक पहुंच चुकी है। ऐसे में संगठन ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं समेत संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों, प्रयोगशाला कर्मचारियों और एक से अधिक लोगों के साथ यौन संबंध बनाने वाले लोगों जैसे उच्च जोखिम श्रेणी के व्यक्तियों के लिए टीकाकरण की सिफारिश की है। ध्यान रहे कि UN स्वास्थ्य एजेंसी ने मंकी पॉक्स को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चिंता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा घोषित किया था। एजेंसी प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडिनोम गेब्रेसस ने बुधवार को पत्रकारों से कहा कि इस समय हम मंकी पॉक्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर सभी के टीकाकरण की सिफारिश नहीं करते। उन्होंने कहा कि हालांकि अभी मंकी पॉक्स के लिए टीकों की प्रभावशीलता पर या कितनी खुराक की आवश्यकता हो सकती है इसे लेकर आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए टीकों का इस्तेमाल कर रहे सभी देशों से उन देशों की प्रभावशीलता पर महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करने और साझा करने का आग्रह किया गया है। WHO प्रमुख ने बताया कि टीकाकरण से संक्रमण या बीमारी से तुरंत सुरक्षा नहीं मिलती और इसमें कई सप्ताह लग सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी WHO ने गुरुवार को विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर चेतावनी देते हुए कहा है कि दुनिया इस समय एक नए प्रकोप, अस्पष्ट तीव्र हेपेटाइटिस संक्रमण का सामना कर रही है जो बच्चों को प्रभावित कर रही है। कुछ और विवरण के साथ शिवानी काला।
WHO प्रभावित देशों के वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के साथ मिलकर हेपेटाइटिस संक्रमण के कारण को समझने के लिए काम कर रहा है, जो कि ज्ञात 5 प्रकार के हेपेटाइटिस वायरस A, B, C, D और E में से किसी से संबंधित नहीं है। UN स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडेनाम गेब्रेसस ने विश्व हेपेटाइटिस दिवस के लिए अपने संदेश में कहा कि अधिक प्रभावशाली होने के लिए मजबूत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से समुदायों में हेपेटाइटिस देखभाल प्रदान की जानी चाहिए और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। हालांकि अधिकांश तीव्र संक्रमणों से हल्की बीमारी होती है और यहां तक कि कई बार तो संक्रमण का पता नहीं चल पाता है, मगर कुछ मामलों में जटिलताएं पैदा हो सकती हैं और ये संक्रमण घातक साबित हो सकता है। केवल वर्ष 2019 में तीव्र हेपेटाइटिस ए से ई संक्रमण की जटिलताओं के कारण दुनिया भर में अनुमानित 78,000 लोगों की मौत हुई।
भारत में हाल ही में एक बार प्रयोग करके फेंक दिए जाने वाले यानी सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में दिल्ली में हमारी सहयोगी अंशु शर्मा ने भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप की कार्यक्रम प्रबंधक दिव्या दत्त के साथ एक खास बातचीत की।
भारत में 1 जुलाई से एकल उपयोग वाली कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं? इस प्रतिबंध के बारे में हमें जरा विस्तार से बताएं।
2021 में गवर्नमेंट ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स की घोषणा की, जिसके अंडर उन्होंने 19 कैटेगरीज और आइटम्स को बैन किया है, जैसे कि एयरबड्स विद प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बलून्स, प्लास्टिक फ्लैग्स, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, थर्मोकोल फॉर डेकोरेशन, प्लास्टिक प्लेट्स, प्लास्टिक क्रॉकरी, कटलरी, ट्रेज, और जो पतला रैपिंग पैकिंग होता है, प्लास्टिक पैकिंग अराउंड स्वीट बॉक्सेस, इन्विटेशन कार्ड्स, सिगरेट पैकेट्स, PVC बैनर्स, वो इन सब का उत्पादन, आयात, भंडारण, बांटना, बेचना, इस्तेमाल करना, ये सब कुछ प्रतिबंधित है।
तो इन 19 चीज़ों को ही क्यों, इन्हीं पर क्यों प्रतिबंध लगा है?
इन पे इसलिए प्रतिबंध लगा है क्योंकि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से भी ये पता चलता है कि ये जो हैं आइटम्स, इनकी उपयोगिता जो है कम है, लेकिन लिटरिंग वैल्यू जो है बहुत जल्दी ये कूड़े में शामिल हो जाती हैं।
तो भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या कितनी बड़ी है और क्या केवल इन 19 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाकर इसका हल निकल सकेगा?
हमारा जो ये पर कैपिटा प्रति व्यक्ति वेस्ट है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसीलिए ये दिस इज़ अ मैटर ऑफ यू नो ग्रेट कंसर्न। जो ये सिंगल यूज प्लास्टिक है, दिस इज़ रफली कंसिडर्ड टू बी 1/3, 1/3 ऑफ द टोटल प्लास्टिक वेस्ट प्रॉब्लम। तो अगर हम इस बैन को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करते हैं तो लगभग मोटा मोटा हम 1/3 ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट प्रॉब्लम को एड्रेस कर लेंगे।
इस इंटरव्यू का विस्तृत संस्करण हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, पता है news.un.org/hi। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब महबूब खान को अनुमति।